بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين، وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
الله صل على محمد وآله.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل
بحمد لله، ہماری گفتگو جو معرفت امام حسین علیہ السلام اور تعمیر کردار کے حوالے سے جو شروع ہوئی تھی 29 ذوالحج سے، اب الحمدللہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اور آج 11ویں تقریر اس موضوع پر ہماری انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اس میں، اس موضوع کے ضمن میں ہم نے کئی نکات آپ کے سامنے اٹھانے اور رکھنے کی کوشش کی، اور اس میں دو پہلو ہم سمجھ لیجئے کہ کنٹینیوسلی اور سائملٹینیسلی ہم نے ان کو فوکس کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کے توسل سے دین کو اس طریقے سے جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں جیسا کہ اس کا حق ہے یا جیسا کہ وہ ہے، اور جتنا ہمیں معتبر ذرائع سے ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. اور جب بھی آپ دین کی حقیقت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی قرآن کریم کی اہمیت کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ اس پوائنٹ کو بھی میں نے بہت زیادہ دقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں بھی قرآن نگلیکٹ ہوگا وہاں آپ بالکل آرام سے سمجھ لیں کہ وہاں پر گمراہی کا کوئی نہ کوئی پہلو یقیناً موجود رہے گا. اور قرآن کو بھی شامل کرنے کا طریقہ دقت والا ہے، توجہ والا ہے. سرسری یا شیلو وے میں آپ قرآن کو خالی بس تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ کے معنی نکال لیا، مطلب اخذ کر لیا، یہ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کو ہم نے کوشش کی ہے انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تہ میں موجود فنڈامنٹل میسیجز ہیں یہ آپ حضرات نے ابزارب کیے ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ علم، عقل، تحقیق، جستجو، اس کو اپنا شعار بنائیں، ان لوگوں کو، ان علماء کے نزدیک ہوں جو آپ کو حق سے اور خدا سے نزدیک کریں، दीन की हक्कानियत से आपको करीब करें, और अपने आप को भी इस बात पर आमादा करें कि जो भी चीज़ है उसको खाली एज इट इज़ या फेस वैल्यू पे ना एक्सेप्ट किया करें, बल्कि उसमें तवज्जो करें, मुतालआ करें, गौर व फिक्र करें, सवाल व जवाब करें, डिस्कशन करें। तो ये तमाम आदतें इंशाल्लाह अगर हमें हमारी पड़ जाएंगी तो हमारे दीन की क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और अगर हम इससे हटकर खाली बातों को एक सरसरी नज़र से या रस्मी और रिवाजी तौर पर लेते रहेंगे तो हमारा दीन उसके अंदर ताकत और तकवीयत उसको हासिल नहीं होगी, उस दीन की बिना पर आपके मसाइल हल नहीं होंगे, ना दुनिया के ना आखिरत के। तो ये बात जहन में रखिएगा कि दीन एक बहुत ही पावरफुल एजेंट है और ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बनाता है, बशर्ते कि आप इसका हक अदा करें, बशर्ते कि आप इसको उसका जायज मकाम अपनी जिंदगी में दें। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले आज इंशाअल्लाह क्योंकि शबे आशूर है तो मैं ज्यादातर जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ ही कोशिश करूंगा कि ज्यादातर टाइम उस पर ही डिवोट हो। थोड़ी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताकि अपना जो हमारा मौजू है वो एक हद तक कंप्लीट हो जाए हमारे सामने। तो उस मौजू की तरफ आने से पहले, और वो भी हमने कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलेमात जो थे मौत के बारे में उन पर ही रुके थे, वहीं से ही बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह आज। लेकिन उससे पहले मैं एक दुआ भी करना चाहता हूँ, और वो दुआ ये है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी खास तौर से यानी कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हक के निजाम को कायम करने के लिए जिहाद करते हैं और कर रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अगर खुद कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगरचे कि हमारी जिम्मेदारी है कि जितना भी हमारे लिए पॉसिबल है हक के कयाम के लिए और बातिल को मिटाने के लिए यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के वास्ते हम अपनी टाइम एफर्ट और एनर्जी को डिवोट करें, लेकिन खास तौर से उन मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने हक के पैगाम को दुनिया के सामने रोशनास कराया है, उजागर कराया है, जो अभी भी खास तौर से जैसे अफ्रीका में जो मोमिनीन और मोमिनात हैं उनकी एक तादाद बहुत बढ़ी है पिछले 25 to 30 years में, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक अक्सरियत जो है वो मजालिम का भी शिकार है। तो हमारी दुआ है कि खुदा उनको इन मुश्किलात से और मुसीबतों से निजात दिलाए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात हैं बहुत सारी जगहों पर या अपनों के हाथों परेशानी का शिकार हैं यानी मुसलमानों के हाथों या अग़यार के हाथों, जैसे फलस्तीन है, कश्मीर है, चीन है, बर्मा है, कि इन इलाकों में मुसलमान और कई जगहों पर मोमिनीन भी वो अग्यार के हाथों, गैर मुस्लिमों के हाथों जुल्म सितम का शिकार है। और जैसे नाइजेरिया है या और दीगर ममालिक हैं जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात पर अक्सर अरसा हयात तंग होता रहता है। तो हम जब आज अपने अशरे को बफजल ताला खैरियत व आफियत से तमाम कर रहे हैं तो हम ये भी दुआ करें कि इस रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात हैं खुदा उनके दीन, इज्जत, आबरू, जान, माल, मईशत सबकी हिफाजत फरमाए और सबको ईमान की राहों पर तरक्की याफ्ता होने की तौफीक इनायत फरमाए, और जहाँ जहाँ भी मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हक के निज़ाम के क़याम के लिए कोशिश कर रहे हैं खुदा ज़ाहरी और बातिनी और मानवी और गैबी वसाइल से उनकी इमदाद फरमाए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। हमने कल आपके सामने मौत के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये कहा था कि इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस सफ़रे करबला में मौत और जिंदगी के मायना को तब्दील कर दिया है। और उसकी वजाहत के हवाले से हमने कुरान करीम से आपको दो तीन पहलू अखज़ करके बताए थे कि क्योंकि ये बात हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो भी फिक्र है, अमल है, किरदार है, वो सब का सब बेस करता है कुरान करीम पर। और जिस तरीके से कि रसूल खुदा के बारे में कहा जाता है कि आपका खुल्क कुरान है, इसी तरीके से तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए भी ये बात दुरुस्त है कि आपका खुल्क और किरदार कुरान की तफसीर है, कुरान की मानवियत और कुरान के मायना को समझाने वाला है। तो हमने कुरान करीम से आपके लिए दो माने बयान किए थे मौत के वास्ते, कि मौत वो हकीकत है कि जिसके बारे में कहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। और ये एक अजीब बयान है कि जिसका मतलब ये है कि हर इंसान मौत की हकीकत को अपनी ज़ात में महसूस करेगा, और ये कोई तमसील नहीं है, कोई तशबीह नहीं है, कोई मेटाफर नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। क्योंकि जहां पर तमसील है, इन्हें मिसाल दी जाती है या तशबीह दी जाती है, तो वहां पर कुरान ने मिसल या मसल का वर्ड यूज किया है उसको वाज़ह करने के लिए। लेकिन इस जगह पर ना का है, का मतलब गोया के, ना मिसल, स्ट्रेट एक स्टेटमेंट है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, डायरेक्ट कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि ये एक हकीकत है कि जिससे हर नफ्स को दो चार होना है, हर नफ्स को उसका सामना करना है। ये बात हमने आपकी खिदमत में अर्ज की। फिर दूसरी बात के कुरान ने यह भी कहा है कि मौत बेहतर है, तुम्हें हयात जावेदानी अता करने वाली है, लेकिन कुछ लोग मैयत हो जाते हैं, मौत से मुलाकात नहीं बल्कि मैयत हो जाते हैं, यानी मुर्दा हो जाते हैं। उनकी तारीफ और तफसील भी थोड़ी सी हमने आपके सामने बयान की कि जो दारे गुरूर यानी धोखे वाले घर में फंस जाए, जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाए, जो अब्दे दुनिया हो जाए या अबीदुद दुनिया हो जाए, ये तमाम टर्म्स हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से सीखी। तो उसमें से इन तमाम चीजों की एप्लीकेशन जिस इंसान पर हो, वो क्या होता है, वो इस दुनिया में जीते जी मैयत हो जाता है। और मैयत होने की तारीफ क्या है कि जो शय भी अपने मकसद खिलकत को पूरा करने से महरूम हो जाए या कासिर रह जाए, जो कुरान ने बंजर जमीन की मिसाल दी है उसको मैयत कहा है। तो वो इंसान जो अपने मकसद खिलकत को पूरा नहीं करता, वो मैयत है, मुर्दा है। और तीसरा भी एक आप इसमें ऐड कर लें कि मौत के हवाले से जो कुरान करीम ने बात अर्ज की है कि मौत यानी आमदे हिसाब, मौत का मतलब यह है कि इंसान के हिसाब का वक्त आन पहुंचा। अब इसमें एक, अब यहां पर तकरीबन वक्त नहीं है क्योंकि बात फिर कहीं की कहीं निकल जाएगी, लेकिन एक दो जुमले में ऐसे कह के समझ लें, मुख्तसरन इख्तिसार के साथ कहकर और आगे निकलना चाहता हूं कि जो अहल अफराद हैं या गहराई में जाने वाले अफराद हैं वो उसको फिर दर्क करें और आगे जाएं, कि जिस तरीके से उरफा ने मर्ग इख्तियारी, यानी मर्ग इख्तियारी का मतलब ये होता है कि इंसान अपने इख्तियार से मौत के मरहले से गुजर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी खुदा ने इंसान को दी है कि मौत का घूंट पीना है, जरूरी नहीं है कि एक खास वक्त इंतकाल पर तुम उस घूंट को पियो, बल्कि अगर तुम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाओ, अपने मेयार को बुलंद करते जाओ, खुदा की बारगाह में आगे बढ़कर अपनी जिंदगी का हिसाब खुद दे दो, तो तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम मौत का घूंट पी लो। तो कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जो जीते जी मौत का जाम पीकर हयाते जावेदानी में दाखिल हो जाते, वो इस दुनिया की जिंदगी में दीगर इंसानों के मानिंद जिंदा नहीं होते हैं, बल्कि वो उस अबदी और दायमी और मलकूती जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो मौत यानी हिसाब, इस बात को जहन में रखिएगा कि मौत और हिसाब जिंदगानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मुल्हिक हैं। और इसी हवाले से कुरान करीम ने सूरह अंबिया में, सूरह अंबिया की पहली आयत है बल्कि, इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, के इंसानों के लिए उनका हिसाब नजदीक आन पहुंचा। हम समझते हैं ना हिसाब कब होगा, कयामत में। कुरान कह रहा है इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, आप देख लें सूरह अंबिया की पहली आयत, कि इंसानों के लिए उनका हिसाब, हिसाब हम उनका हिसाब नजदीक आन गया, आन पहुंचा। वहुम फी गफलतिम मुरिज़ून, और उनकी हालत क्या है कि वो गफलत में पड़े हुए, मुसलसल उससे मुंह मोड़े हुए किसी और तरफ देख रहे हैं। यानी वो इस तरीके से गफलत में पड़े हुए हैं कि वो अपने हिसाब की तरफ नहीं देखना चाहते, अपने हिसाब की तरफ मुतवज्जे नहीं। तो इससे भी हमको बात समझ में आती है कि हिसाब करीब है, हिसाब के मरहले से गुजरने के लिए कयामत नहीं है, बल्कि जो इंसान अगर लायक है मर्ग इख्तियारी तक पहुंच जाए, यानी खुद आगे बढ़ के हिसाब दे दे, तो वो अपने इंतकाल से पहले उस मरहले तक पहुंच जाता है जहां तक मौत ले जाएगी। वरना तमाम इंसानों के लिए जब इंतकाल आएगा, मौत का घूंट पीना पड़ेगा, तो उस वक्त फिर हिसाब का मरहला मौजूद है। तो ये मौत के हवाले से बुनियादी मारिफत जो कुरान करीम हमको देती है। और फिर जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमलों से इस्तेफादा करते हुए कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने मौत के हवाले से जो खौफ इंसानों पर तारी रहता है, सबसे पहले उस इम्प्रेशन को डिस्कार्ड किया, यानी कि जैसे कुरान करीम कह रहा है कि मौत का घूंट पियो आके, तुम्हें पीना है, आगे बढ़ के खुद इस जाम को अपने होठों से लगाओ, इस्तकबाल करो। जो मौत को खुदा के रस्ते में कबूल करते हैं, मौत यानी मुर्दनी और मैयत होने वाली हालत उन तक आती ही नहीं है। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, यानी मैयत होने का तसव्वुर भी उनके लिए नहीं, जो फी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाते हैं और मौत को गले से लगा लेते हैं। कुरान इस बात को कह रहे हैं, और जनाब सैयद शहदा अलैहिस्सलाम भी, जो कल मैं आपको बता रहा था कि हुर ने जब आपको कहा कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं तो आप यकीनन अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, जान खो देंगे अपनी, कत्ल हो जाएंगे, तो आपने फरमाया था क्या तू मुझे मौत का खौफ दिलाता है, यकीनन तेरे तीर ने खता की और तेरा गुमान नाकाम हो गया, और मेरा नफ्स इस बात से बुजुर्ग है कि मैं मौत के खौफ में मुब्तला हूं, और मेरी हिम्मत इससे आली है कि मैं जुल्म और सितम का बोझ अपने कंधे पर उठा लूं। यहां तक हमारी बात हुई कि मौत का जो खौफ है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर आप फरमाते हैं वहल तकदरूना अला अक्सर मिन कत्ली, और तुम जब मुझे डरा रहे हो, खौफजदा कर रहे हो, क्या तुम मेरे कत्ल से ज्यादा किसी चीज पर कुदरत रखते हो? ये बहुत बहुत अजीब और बहुत शानदार जुमला है कि ऐ मुझे डराने वाले, क्या तुम मेरे कत्ल से ज्यादा किसी और चीज पर कुदरत रखते हो जो मेरे साथ कर लोगे? क्योंकि हम जैसे लोग जब तसव्वुर करते हैं तो हमारे साथ, यानी जान, दुनिया में जान जाने के साथ हमारे सब कुछ अंधेर हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम हमको इसी बात की तालीम दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी आखिरत तुम्हारी नजरों के सामने रोशन है तो बदन कत्ल क्या चीज होगी? तुम थोड़ी कत्ल होगे, इंसान थोड़ी कत्ल होता है, इंसान का बदन कत्ल होता है, और बदन के कत्ल होने से इंसान खत्म नहीं हो जाता। ये वो तसव्वुर है, ये वो तासुर है, ये वो तफक्कुर का मरहला है कि जो कुरान करीम ने भी हमको दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको वाजे और रोशन और उजागर किया। तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो मेरे साथ? मरहबम बिल कत्ल फी सबीलिल्लाह, मरहबा हो। किस चीज पर मरहबा हो? उस कत्ल पर मरहबा हो, आफरीन हो, जो सबील खुदा में हो, यानी अल्लाह के रस्ते में कत्ल हो जाने पर मरहबा। लेकिन वलाकिन्नकुम ला तक़दिरूना अला हद में मजदी, मेरी जो बुजुर्गी है, मेरी जो करामत है, तुम उसको मुनहदिम करने पर कुदरत नहीं रखते हो। तुम खाली किस बात पर कुदरत रखते हो? कि तुम मेरे बदन को कत्ल कर दो। तुम उससे भी आगे बढ़कर इस बात पर शायद कुदरत रखते हो कि कत्ल करने के बाद मेरे बदन की बेहुर्मती भी कर दो। लेकिन खुदा ने, यहां पर आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? मजद, जिसको हम कहते हैं मजीद। इसमें खुदा भी है, कुरान के लिए भी कहते हैं कुरान मजीद, इन्नहु हमीदुम मजीद। ये मजद का लफ्ज आपने इस्तेमाल फरमाया कि मेरे मजद को, मेरी बुजुर्गी को, मेरी अजमत को तोड़ने की, सरनेगू करने की, सरकोब करने की ताकत तुम्हारे पास, ये कुदरती नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? इसलिए कि करामत, शराफत, इज्जत देने वाली जात वो है कि जिसने हम सबको खल्क किया, जो हम सबका मालिक है। और आप फरमाते हैं वह महव इज्जती व शरफी, और तुम्हारे पास इस बात की ताकत ही नहीं है कि तुम मेरी इज्जत और शरफ को महव कर दो, मिटा दो। फ़इज़ा ला उबाली मिनल कत्ल, तो इस सूरत में मुझे कत्ल की कोई परवाह नहीं है। अब ये यहां पर इस जगह पर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि मौत के तसव्वुर को मुनकलिब, इनकलाब दे रहे हैं, रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं मौत के तसव्वुर को, कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा बाशरफ और बाइज्जत मौत वो है कि जो सबील इलाही में उसको आ जाए। यानी जिस तरीके से आपने वो हदीस सुनी होगी बहुत मशहूर के मम्मात आला हुब आले मोहम्मदिन माता शहीदा, के जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिसे मौत आती है वो शहीद होता है। क्या मतलब होता है आले मोहम्मद की मोहब्बत? क्या है? सबील इलाही है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है वो खुदा के रस्ते पर जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि आले मोहम्मद की जो चाहत है वो सिवाय खुदा की चाहत और मशीयत के किसी और चीज का नाम नहीं है। तो आप यहां पर इस बात को समझा रहे हैं कि तुम इस खौफ के, जो तुमने अपने लिए कैदखाने बनाए हुए हैं, कि जहां पर तुम्हें अपनी दुनिया के मुनहदिम होने का हर वक्त खौफ लाहक रहता है, और जिसकी वजह से तुम इज्जत व शराफत व बुजुर्गी के साथ अबदी और दाइमी जिंदगी में दाखिल होने के काबिल नहीं रहते, اس سے باہر آ جاؤ، اس حیات سے باہر آ جاؤ. لیکن بس ان تمام باتوں کو کہتے ہوئے جس بات پر سب سے زیادہ دل دکھتا ہے بہت زیادہ، اور انہیں پہلے اپنی حالت کو دیکھ کر اور باقی پھر معاشرے کی حالت کو دیکھ کر، کہ مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اتنا نیچے جا چکے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، سمجھنے کے بھی قابل نہیں رہ گئے ان باتوں کو. یہ شرف کیا ہوتا ہے، یہ عزت کیا ہوتی ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، مجد و بزرگی کا کیا مطلب ہے. اتنا زیادہ آج کی دنیا نے ہمیں قید در قید در قید، ملٹیپل لیولز اور لیئرز ہیں پریزن کی، امپریزنمنٹ کی، کہ جس میں آج کے مسلمان کا نفس پھنسا ہوا ہے. وہ دین کے حوالے سے بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، لیکن دین کی روح کو اخذ کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا. کہ وہی جو امام علیہ السلام نے اپنے اس دور میں بھی یہی کہا تھا کہ میں تم کو بار بار حق کی طرف بلاتا ہوں لیکن تم پر میری کوئی بات اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ تمہارے خون اور گوشت میں حرام جذب ہو چکا ہے. تمہارے جو خون اور گوشت ہیں وہ حرام، اور حرام جیسا میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، حرام کا مطلب خالی یہ نہ سمجھیے گا کہ ذبیحہ حرام ہوتا ہے بس اور کچھ حرام نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جہاں پر نافرمانی اور معصیت خدا ہے وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے، اور اس کا اثر ہے زندگی پر اور زندگی میں. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان اگر اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں اس قابل اور لائق نہیں ہو پا رہا ہے کہ خدائی فکر کو ابزارب کر سکے، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ، یہ بہت بہت توجہ، یعنی بہت تکلیف دہ بات ہے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. اس کا لازمی مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا ہے؟ اگر قرآن ہم جذب نہیں کر پاتے، اگر ہم کلام معصوم کی روحانیت کو ابزارب نہیں کر پاتے، اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب یہ ہے کہ نظام خدا نے ہمیں قبول نہیں کیا. اس کا بالکل صاف مطلب یہ ہے کہ وہ نظام کہ جو انبیاء کا ہے، رسول کا ہے، آئمہ کا ہے، قرآن کا ہے، دین کا ہے، ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہیں. ہم اس سے کسی نہ کسی کہیں پیریفری میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، اور یہ بات ہمیں سخت لگتی ہوگی لیکن ان سب باتوں کا کرنا ضروری ہے. ہم پتہ نہیں کب ہوش میں آئیں گے اور کیسے ہوش میں آئیں گے. کہ جیسے میں اگر انہیں بات کروں کہ ہم نے جو ہماری خرابی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا نے ہمیں جو کچھ عطا کیا تھا ہم اس میں سے کسی سے بھی ڈھنگ سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، کسی بھی نعمت سے. تو اس پر بہت توجہ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام ہمیں جس جگہ تک لانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ہے موت کا نظریہ، یہ ہے موت کی حقیقت، کہ انسان آگے بڑھے، موت کو خود استقبال کرے، موت کا جام پینے کی خواہش رکھے، اور یہ فقط اور فقط وہی انسان کر سکتا ہے، اسی میں ہی یہ پاسبلٹی موجود ہے، جو خواہشات نفس اور دنیا کی غلامی سے اپنے کو آزاد کرے اور خدا کی مرضی کا پابند ہو، خدا کی راہ پہ چلے، اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں. ایک قول اور امام علیہ السلام کا، اور پھر میں شب عاشور کے واقعات کی طرف آ جاؤں کہ اس روایت کو جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں معانی الاخبار کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کئی ایسی روایتیں سلیکٹ کی کہ جو نسبتاً تھوڑی سی مشکل تھیں، اور اس کے بعد ان کی تفصیل و تشریح و معائنہ بیان کیے ہیں. تو اس حوالے سے اس کتاب کا نام رکھا ہے معانی الاخبار، یعنی میننگ آف روایات، روایات کی میننگز اور ایکسپلینیشن. اس میں آخر میں ان کا ایک چیپٹر ہے جو ہے کتاب النوادر. نوادر نادر و نایاب آپ سمجھتے ہی ہوں گے، نوادر نادر کی جمع ہے، پلورل ہے، یعنی نادر و نایاب احادیث کی بک، وہ چیپٹر جس میں نادر و نایاب احادیث انہوں نے اپنے حساب سے جمع کی. ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عاشور کا دن جب کافی حد تک گزر گیا اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو موجود تھے، تو ان میں سے کچھ اصحاب کو جو کچھ گزر رہا تھا اس کی سختی محسوس ہو رہی تھی، وہ کچھ اس سختی کو فیل کر رہے تھے. لیکن اب یہاں پر وہ والی بات نہیں سمجھیے گا کہ جیسے ہم کہیں کہ وہ مضطرب، نہیں، سختی کو محسوس کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت نیچرل بات ہے کیونکہ ہم تو شاید اس کو منظر کو دیکھ کر ہی تاب نہ لا سکیں. تو اس حالت میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ آپ مکمل طور پر ایک استقامت اور صبر کا نمونہ ہیں اور کاملاً پرسکون ہیں. اور یہ جملہ موجود ہے ہماری کتابوں میں بھی کہ جیسے جیسے شہادتیں پیش ہوتی جا رہی تھیں، امام حسین علیہ السلام کے سکون اور اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، نہ کہ پریشانی اور اضطراب میں. جیسے کہ ایک انسان اپنے مشن کی، اپنے فریضے کی کامیاب ادائیگی کا یقین رکھتے ہوئے مرحلہ انجام سے نزدیک ہوتا جا رہا ہو. جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اس طریقے سے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ان واقعات کا، بلکہ آپ مجسم استقامت اور سکون ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انظروا، ان کی طرف نظر کرو، لا یبالی بالموت، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں. تو وہ اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف نظر کرو کہ اس عبد خدا کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ موت کی جتنی معرفت حاصل کر لیں، لیکن جب مرحلہ موت آتا ہے تو انسان بہرحال اس کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے، کیونکہ یہ وہ تجربہ ہے جو ہم نے زندگی میں اس کے مثل کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کیا. لا یبال الموت بالموت. تو اس جملے کو جب امام حسین علیہ السلام نے سنا تو آپ نے ان کو جمع کیا جتنے اصحاب باقی رہ گئے تھے، اور اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا ہے، میں اس کے دو جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. چھوٹا سا، ظاہر ہے کہ وہ کوئی لمبا خطبہ دینے کا تو وقت بھی نہیں تھا. دو جملے آپ فرماتے ہیں، فبرن بن الکرام، فبرن بن الکرام، جو اصحاب ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کرامت کے، کرم کی بیٹوں. اور یہ انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی لقب ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، کہ انسان کس سے اس کی نسبت بن جائے، اعلی صفات کے ساتھ اس کی نسبت بن جائے. کرامت کے بیٹوں، صبر. ان الموت فما الموت الا قمطرة، کہ موت نہیں ہے مگر ایک پل، ایک بریج. تعبر بكم عن البؤوس والضرار الى الجنان الواسعة والنعم الدائمة. موت فقط اور فقط ایک پل ہے، ایک بریج ہے، اور تم اس کو عبور کرنے کے بعد سختی और इज़्तिराब और परेशानी और अज़ियत को अपने पीछे छोड़कर हमेशा की नेमतों में और वुसअत वाली जन्नतों में दाखिल हो जाओ। अब ये जो जुमला है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसको उलमा बहुत कोट करते हैं और ये बहुत आलीशान जुमला है कि बेशक मौत नहीं है मगर एक पुल, और ये तकरीबन उससे मिलता जुलता जुमला है कि जो कुरान करीम ने इस्तेमाल किया था कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान करीम ने मौत को एक जाम से ताबीर दी जिसका घूंट लेना है और वो घूंट मौत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये एक पुल है जिस पर से गुजर जाना। दोनों सूरतों में आप देखें कि मौत अगर घूंट लेना है तो नफ्स है कि जो मौत को कंज्यूम कर रहा है, ना कि मौत नफ्स को कंज्यूम कर रही है। और अगर मौत एक पुल है तो जब आप पुल पर से गुजरते हैं तो पुल आपके सर पे नहीं होता, आपके पैरों के नीचे होता है। के इमाम अलैहिस्सलाम भी यहां पर उसी उसी तरीके से कि जो कलाम मासूम है वो कलाम खुदा की तफसीर करता है कि इस जगह पर लाकर, यानी कि ये कुरान और अहले बैत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले को इतना आसान कर दिया, सहल कर दिया, कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा खौफ दिलाने वाला मरहला क्या है? मौत, जिसका नाम आते ही, जिसका जिक्र आते ही हर इंसान पर लर्जा तारी हो जाता है, और इंसान इसको इतना इग्नोर करता है कि मौत की तरफ सोचना भी नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। लेकिन कुरान और इमाम हुसैन ये कहते हैं कि मौत तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन टॉनिक है अगर तुम अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो, अगर तुम उसके लायक हो जाओ, उसके काबिल हो जाओ। और लायक और काबिल होने की बुनियादी शर्त क्या है? कि अपनी जिंदगियां खुदा को दे दो और खुदा के रास्ते में सर्व करो। तो जिस वक्त भी तुम्हारे लिए मौत का जाम आया, तुम्हारे लिए शीरियों खुशगवार, कोई अजियत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये मौत है जिसे तुम कंज्यूम कर दोगे, ये मौत वो है कि जिस पर से तुम गुजर जाओगे। तो यहां पर हम अपनी गुफ्तगू को मौजू की हद तक तमाम करते हुए, और जाहिर है कि आज शब आशूर है और शब आशूर के हवाले से यकीनन बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है कि जो की जा सकती है। उसमें से दो तीन ऐसे पहलू हैं कि जिसको मैंने मुंतखब किया आपके सामने बयान करने के लिए, और उस इब्तदाई मरहले से हम जल्द अज जल्द गुजर जाएं कि जब 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक तरीके से जबरदस्ती जमीन करबला में रोक दिए गए, और फिर उसके बाद अफवाज पर अफवाज आती गईं, उमर साद लश्कर यजीदी का सिपह सालार बन के आ गया 6,000 सिपाहियों को लेकर, 7 मुहर्रम से उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म से पानी बंद हो गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम को ज़बरदस्ती दरिया के किनारे से हटा दिया गया, और 9 मुहर्रम को जब शिमरे लईन पहुंचता है तो उसका इसरार है कि जल्द अज जल्द जंग को ख़त्म किया जाए, और जंग की आमादगी तकरीबन हो चुकी है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलमदार को भेजते हैं और कहते हैं कि एक रात जंग को मौखर करो, और उसका वजह, उसके रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद हुर को मौका देना चाह रहे हों, कुछ और लोगों के इंतज़ार में हों कि वो वापस आ जाएं, लौट आएं। वजह जो आपने बयान फरमाई वो यही थी कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मुझे उसकी इबादत किस कदर महबूब है, मैं उसकी इबादत से किस कदर मोहब्बत करता हूं। ये वजह आपने बयान कर। जब शब आशूर आती है तो इमाम अलैहिस्सलाम अपने यानी जंग की तैयारी में और उसमें मसरूफ होते हैं। एक दो वाकयात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। एक वाकया, और इसमें क्योंकि इतने बेहतरीन कलमात हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, कि मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उनको पूरी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। ये रिवायत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि आप ये फरमाते हैं कि जब शबे आशूर आई और ये बात तय हो गई कि कल का दिन जंग और मुबारजे का दिन है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि खेमों के पीछे खंदक खोदी जाए। आपने ये हुक्म दिया कि तमाम खेमों को एक दूसरे से करीब करके और मिला के नस्ब कर दिया जाए, और आपने इस बात की पूरी मंसूबाबंदी फरमाई कि दुश्मन खाली सामने से हमलावर हो सके और बाकी तमाम अतराफ को दुश्मन के लिए रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। आपने इन इंतजाम को फरमाया। उसके बाद आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं खेमे में था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरी फूफी जैनब सलामुल्लाह अलैहा मेरी तीमारदारी कर रही थी। बराबर वाले खेमे में बाबा जान तशरीफ फरमा थे, और वहां पर जॉन जो हजरत अबू जर के गुलाम थे और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार को सैकल कर रहे थे। तो हमने सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ अशआर पढ़ रहे हैं, और उसका मतलब क्या है कि ऐ जमाने, ऐ दहर, तू कितना बुरा खलील है, तू कितना बुरा दोस्त है, तूने अपने कितने चाहने वालों को कत्ल कर डाला और कितने मोहब्बत करने वालों को मिट्टी के नीचे पहुंचा दिया, लेकिन मेरा अमर, मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुझसे दोस्ती करूं या तुझसे मोहब्बत करूं। इन नमल अमरो इलल जलील, मेरा अमर जो है वो खुदाए जलील और जुलजलाल वल इकराम की बारगाह में। वकुल्लु हय्युन सालिकु सबील, और हर इंसान जो जिंदा है वो मेरे रास्ते पर चलने वाला है। हर इंसान जो जिंदा है हकीकतन वो मेरे रास्ते पर चलने वाला है, कि उसकी जिंदगी के उमूर, उसकी जिंदगी के मामलात जमाने के हवाले नहीं होते बल्कि खुदाए जुलजलाल वल इकराम के हवाले होते हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि जनाब सैयद शहदा अलैहिस्सलाम ने इन अशार को दो तीन बार तकरार की, और मैं भी सुन रहा हूं और फूफी जान के कानों में भी आवाज आ रही। तो मैं समझ गया कि अब बाबा जान जब इस तरीके से कलाम कर रहे हैं तो अब मामला इख्तिताम और अंजाम की तरफ जा रहा है। तो आप फरमाते हैं कि मेरा गला रुंध गया, मेरा सीना गम से भर गया, आंखें अश्कबार हो गई, लेकिन मैं खामोश रहा, मैंने जब्त किया। लेकिन औरतें रकीकुल कल्ब होती हैं, उनके दिल नर्म होते हैं, तो बीवी इसको बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने एक सदा बुलंद की और कहती हैं कि वाए हुए जिंदगी पर, काश के मौत आए और मेरी जिंदगी को खत्म कर दे। ए हुसैन, नाना, बाबा, मादरे गिरामी और भाई के बाद आप उन गुजर जाने वालों के खलीफा हैं, आप उन सब के बाद हमारी आस हैं। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। एक और जुमला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं बीवी के पास और एक और जुमला आपने इरशाद फरमाया जिससे बीवी को यकीन हो गया कि अब जुदाई में कुछ फासला नहीं है। फरमाती हैं कि ऐ भाई, क्या ये लोग आप पर सितम करेंगे? जिससे अंदाजा होता है कि खवातीन अहले बैत, हरम अहले बैत को शब आशूर तक ये बात बहुत वाज़े नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि इसका तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन था। जो रोज़े आशूर हुआ है, जो कुछ भी रोज़े आशूर हुआ है, वह नाकाबिले तसव्वुर हुआ है। ऐ भाई, क्या ये आप पर सितम करेंगे, आप पर जुल्म करेंगे, आपको कत्ल कर देंगे? फिर आपने गिरिए की आपकी सदा बुलंद हुई और आप फरमाने लगी कि ये इस तसव्वुर से भी मेरा दिल डूब रहा है और ये ख्याल मेरी जान पर बहुत सख्त है। आप इस तरीके से फरियाद और आह बुलंद करती रहीं और रोते रोते बेहोश हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होश में लाते हैं और अब जो जुमले हैं ये कमाल है, यानी कि वाकयन इस इन्हीं तमाम चीज़ों की बिना पर हमें इस बात का यकीन कामिल हो जाता है कि यह हस्ती मासूम है। मैं उसको आपके हुस्न समात के लिए और सवाब के लिए, यानी कि मैं इस जो अरबी नकल कर रहा होता हूँ तो उससे मेरी नीयत ये भी होती है कि इमाम अलैहिस्सलाम के जुमलों को दोहराने का भी सवाब है, कि हम अगर इमाम के जुमलों को अपनी जबान पे दोहराते हैं उसका भी अजर। या उख्ता हो इत्तकिल्लाह व अइज्जी बिअज़ाइल्लाह, ऐ मेरी बहन, तकवा इलाही इख्तियार करो, तकवा इलाही पर कायम रहो और अपनी अज़ा, अपनी शिकायतें खुदा की बारगाह में लेके जाओ। किसी और के सामने अपनी अज़ा को, अपनी फरियाद ना बुलंद करो। वालमी, और इस बात का इल्म रखो, अन्न अहलल अर्ज यमूतून, के बेशक जमीन वाले मौत से दो चार हो जाएंगे, सारे जमीन वालों को मौत आनी है। وَأَنَّ أَحْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ, اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وَأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ, اور ہر شے جو خلق ہوئی ہے سب کی سب ہلاک ہونے والی ہے سوائے وجہ خدا کے, سوائے اللہ کے وجہ کے۔ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ, वो अल्लाह कौन है जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जिसने मखलूकात को अपनी कुदरत से खल्क किया। वयबअथुल खल्क वयऊदून, और मौत देने के बाद वो खुदा उनको दोबारा उठाएगा और उनको वापस पलटाएगा। वहुवा फर्दुन वहदहू, और वो तन्हा है और वाहिद है। इस मौके पर यह तौहीद बयान करना, इस मौके पर यहां से हमें यकीन होता है कि यह हस्ती वाकईन जलवाए सिफात खुदा है। याद आती है किसी को इस तरीके से हमदो सनाए खुदा ऐसे मौके पर? जद्दी व अबी व उम्मी व अखी खैर मिन्नी, ऐ बहन तुमने सच कहा, मेरे नाना, मेरे वालिद, मेरी माँ, मेरे भाई, सब के सब मुझसे बेहतर थे और सब इस दुनिया से चले गए। वले कुल मुस्लिमिन बिरसूलिल्लाह उस्वतुन, और हर वो शख्स जो मुसलमान है उसके लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन सीरत और जिंदगी का नमूना है। रसूल खुदा की जिंदगी को देखो कि किस तरीके से उन्होंने मसाइब का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया। और फिर आप फरमाते हैं, या अखिया, ए मेरी बहन, इन्नी अक्समतु फअबर्री कस्मी, ए मेरी बहन, मैं तुमको कसम देता हूं और तुम मेरी कसम को अहमियत देना, तुम मेरी कसम की पासदारी करना। वला तुशक्की अलैया जैबन, के मेरे ऊपर अपने गरेबान को चाक ना करना। वला तखमशी अलैय वजहन, ना अपने चेहरे पर कोई खराश डालना। वला तदअ अलैय बिलवैल वस्तबूर, और ना आहो वावैला और ना हाय और हलाकत की सदाएं बुलंद करना जबकि मैं इंतकाल कर जाऊं। ये इमाम अलैहिस्सलाम के जुमले बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले के लिए। और ये शब आशूर का एक इंतहाई अहम वाकया है कि जिसमें जिसने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को एक खातून से बुलंद करके, एक खातून के मेयार से बुलंद करके जानशीन अली बना दिया कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इसके बाद मिसले अली इब्न अबी तालिब थी करबला में और करबला के बाद। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन से बात की और उसके बाद आपने अपने असहाब को जमा किया। अपने असहाब को जमा करने के बाद आप फरमाते हैं, और ये रिवायत भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कि जिसमें आप फरमाते हैं कि तुम सब अपनी अपनी फिक्र करो, ये कौम जो सामने सफारा है ये सिर्फ मुझसे सरोकार रखती है, इन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। जब ये मुझे कत्ल कर लेंगे इनके दिलों में ठंडक पड़ जाएगी, ये तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे, कोई मामला नहीं रखेंगे, मैं अपनी बैत तुमसे उठा लेता हूं, तुम सब रात की तारीकी में यहां से चले जाओ। असहाब जिसमें सबसे पहले अब्बास अलमदार हैं जो खड़े होते हैं, दीगर असहाब हैं, और उनके जवाब का खुलासा ये है कि खुदा की कसम ऐसा हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। हमारा वतन, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सिर्फ आप हैं, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम आपके बाद जिंदा रहें। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब के सब कत्ल कर दिए जाओगे अगर मेरे साथ रहोगे तो। कहते हैं खुदा का शुक्र है अगर हमें आपकी मईयत में कत्ल होने के लिए खुदा मुंतखब कर ले, हम खुदा के शुक्रगुजार होंगे कि अगर वो हमें मुंतखब कर ले, हमारा इंतखाब कर ले कि हम आप पर अपनी जानों को निसार कर दें। जब ये गुफ्तगू तमाम होती है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद किया, अपने असहाब के हक में दुआ की। फरमाते हैं कि ऐसे असहाब ना मेरे नाना रसूल अल्लाह को मिले, ना मेरे बाबा को, ना मेरे भाई को। और फिर इस रिवायत के ये जुमले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि अपनी निगाहों को ऊपर उठाओ, और जब वो अपनी नजरों को ऊपर उठाते हैं तो जन्नत में अपने घरों को देखते हैं, जन्नत का मुशाहिदा करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि देखो ये घर जो नजर आ रहा है ये तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। ये शब आशूर का दूसरा अहम तरीन वाकया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, अपने खेमे की तरफ वापस जा रहे हैं, तो एक 13 साल के लड़के को देखते हैं और वो पूछता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आपने फरमाया कि कल सब शहीद हो जाएंगे, क्या मेरा नाम भी शहदा की फहरिस्त में है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवाब में एक सवाल करते हैं और कहते हैं कि बेटा कासिम, तुम्हारी निगाह में मौत कैसी है? ये भी मौत के हवाले से एक इनकलाबी जुमला है। कासिम इब्ने हसन फरमाते हैं अहला मिन अल असल, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरी। امام حسین جواب دیتے ہیں، ہاں بیٹا، تمہارا نام بھی نصاب شہداء میں موجود ہے، بلکہ تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی اس دفتر میں موجود ہے۔ اور جب عصر عاشور آئی، عصر عاشور میں امام حسین علیہ السلام اب تنہا رہ چکے ہیں، ایک نظر تمام شہداء کے لاشوں پر ڈالتے ہیں، دریا کی ترائی کی طرف عباس علمدار کے لاشے کو دیکھتے ہیں اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیشے کے شیرو، اے میرے جوان مردو، اے میرے دلاورو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج حسین تمہیں آواز دیتا ہے لیکن تم لبیک نہیں کہتے، تم میری پکار پر نہیں آتے؟ تم تو وہ تھے کہ جنہوں نے مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پھر صدائے استغاثہ بلند فرماتے ہیں کہ حل من ناصر ينصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی جو ہماری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو ہماری استغاثے کو پہنچے، ہے کوئی جس میں اتنی غیرت و حمیت ہو کہ حرم رسول اللہ پر پڑنے والی اس مصیبت کو دفع کرے؟ امام علیہ السلام کی اس صدا کی جواب میں لشکر اشقیہ پر تو شاید کچھ نہ اثر ہوا، لیکن خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، بیویوں نے صدا بلند کرنا شروع کی کہ یا ابا عبد اللہ، کیا آپ نے موت کو تسلیم کر لیا؟ امام علیہ السلام مڑ کر جب دیکھتے ہیں تو ایک خیمے کے دروازے پہ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ایک نیزہ لے کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ خیمے سے باہر آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام جلدی سے اپنے وصی و خلیفہ برحق کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹا، واپس خیمے میں جاؤ۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بابا جان، آپ کی صدا استغاثہ حل من ناصر کا جواب دینے کے لیے باہر آئے۔ آپ فرماتے ہیں، بیٹا، تم حجت خدا ہو، تمہیں میرے بعد باقی رہنا ہے، تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، خیمے میں واپس جاؤ۔ پھر جب دوسرے خیمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں؟ اے بیبیوں، تمہارے اس صدائے گریہ کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا تو اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام علیہ السلام بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ لاؤ اس بچے کو مجھے دو کہ میں اسے بھی ودا کر لوں، اور ایک روایت میں ہے کہ شاید میں اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کے لیے پانی کا بندوبست کر لوں۔ اس کے بعد اس بچے کو لے کر میدان میں آتے ہیں، ابا کے دامن کا سایہ کیے ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد اس شیر خوار کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں۔ جب فوج اشقیہ نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس قرآن ناطق کو ملاحظہ کیا تو جن کے دل امام کی صدائے استغاثہ سے نہ پگھلے تھے، وہ اس معصوم کی صورت کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عمر ابن سعد العین نے حرملہ ابن کاہل اسدی کو بلایا اور حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا لشکر ہی پلٹ جائے۔ حرملہ نے تیر اپنے کمان میں جوڑا، گلوئے علی اصغر کا نشانہ لیا، اس تیر کو گردن علی اصغر کی طرف روانہ کیا، اور چشم زدن میں وہ معصوم باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی شاید इस मंजर पर हैरान रह गए होंगे कि ऐसी ये कौम, ये उम्मत अपनी शकावत में इस हद तक भी गिर सकती है कि एक 6 महीने के बच्चे को भी कत्ल कर दे। उस शशमाहे के बदन में खून ही कितना होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस खून को अपने हाथों में लिया और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के जुमले हैं कि उस खून को आसमान की तरफ उछाल दिया, जैसे खुदा के पास बतौर अमानत रवाना कर रहे हो। और आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम, उस खून का एक कतरा भी वापस गिर कर जमीन पर ना आया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, हव्वना अलैया, कि ये भी मेरे लिए आसान है, मा नजला बी, जो कुछ मेरे ऊपर आया, इन्नहू बेअइन अल्लाह, के बेशक ये सब कुछ खुदा की नजरों के सामने। लअनतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। खुदा खुदावंद अली अज़ीम, क़ातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मजालिम करने वाले तमाम अशकिया और लईन अफराद पर लानत फरमाए। खुदा दुश्मनान अहले बैत के शर से तमाम मोमिनीन व मोमिनात को महफूज व मामून फरमाए। खुदा अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुनाकिद करने, बरपा करने का अजर आप हजरात को बेहतरीन इनायत फरमाए। खुदा आपकी दुनिया और आखिरत को बरकतों से पुर कर दे और आपकी औलाद को, आपकी नस्ल को और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हमारी नस्लों को दीन और ईमान की नेमत और रहमत से बहरावंद फरमाए। अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा, तमाम शहदा के लिए दरजात की बुलंदी की दुआ कीजिएगा, और ये कि खुदा जल्द अज जल्द इमाम जमान अलैहिस्सलाम के जुहूर की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि।